भैया, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ठाकुर साहब गलत नहीं हैं? आरवी के सवाल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अर्जुन ने उसे देखा, फिर उसने अमरजीत जी की बताई सारी बात उसे बता दी। आरवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। अर्जुन ने उसे पूरी बात बताई, फिर आगे बताना शुरू कर दिया। डैड को उस वक्त लगा कि अंकल ने उन्हें धोखा दिया है, और उसके बाद उन्होंने पलटकर उनकी तरफ कभी नहीं देखा। तो तू खुद सोच कि वो अंकल का एक्सीडेंट कब और क्यों करवाते। मॉम और तेरे जाने के बाद उनके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं था। वो तो अपने काम और मॉम और तुझे ढूंढने में लगे हुए थे। वो मॉम को धोखा कैसे दे सकते हैं जब वो आज भी उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैंने उनकी आंखों में मॉम का इंतजार देखा है। मैं नहीं मान सकता कि डैड कभी मॉम को धोखा दे सकते हैं, और ना ही मैं ये मान सकता हूँ कि औरतों की इतनी इज्जत करने वाला आदमी उस औरत पर बुरी नज़र डाल सकता है जिसे उसने हमेशा भाभी का दर्जा और सम्मान दिया हो। रही बात अंकल को मारने की कोशिश करने की, तो इसकी उन्हें ज़रूरत ही क्या थी। भले तब उनके और अंकल के बीच प्रॉब्लम रही हो, वो उनसे गुस्सा भी थे, पर अंकल से बहुत प्यार करते हैं वो आज भी। वो कभी अपने गुस्से में इतने अंधे नहीं हो सकते कि अपने जिगरी यार को मारने की कोशिश करें। मेरा मन नहीं मानता कि अंकल डैड को धोखा दे सकते हैं, या डैड वो सब कर सकते हैं जिसका इल्ज़ाम शान उन पर लगाता है। मैंने हर पहलू को समझने की कोशिश की है, भले ही मुझे पूरी बात नहीं मालूम, पर जितना जानता हूँ उसमें भी मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है जो दोनों परिवारों में दुश्मनी करवाकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। अब वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि बहुत कुछ दफन है अतीत के पन्नों में, जो तभी बाहर आ सकता है जब हम सारी हकीकत जान जाएं। बहुत सी ऐसी टूटी हुई कड़ियां हैं जिसे जोड़ना है, तब जाकर हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे, और इसके लिए मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि एक तू ही है जो वहाँ उस घर में शान के साथ रहती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शान से जुड़े हर शख्स को ये राज पता होगा कि सालों पहले क्या हुआ था। अगर शान नहीं बताता तो तू किसी और से जानने की कोशिश कर। जब तक हमें ये सच सच पता नहीं चल जाता कि सालों पहले हुआ क्या था, हम ये पता नहीं लगा सकेंगे कि इन सब के पीछे कौन है असली गुनाहगार। और जब तक असली गुनाहगार सामने नहीं आ जाता, उसे उसके गुनाहों की सज़ा नहीं मिल जाती, नफ़रत की ये आग यूं ही हम सबकी ज़िंदगियों को जलाती रहेगी। अगर सब ठीक करना है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसमें नफ़रत नहीं मोहब्बत हो, तो हमें सच्चाई पता करनी ही होगी और असली गुनाहगार को ढूंढना ही होगा, और इस वक्त सच सिर्फ तू पता कर सकती है। मैं जानता हूँ कि शान कुछ नहीं बताएगा, पर अंकल बता सकते हैं तुझे सब सच। एक कोशिश करके देख, शायद हम सबकी उलझी जिंदगियाँ सुलझ जाएँ। अर्जुन ने गंभीरता से अपनी बात पूरी की। आरवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी और साथ ही समझ भी रही थी, हालांकि वो अतीत के राजों और दोनों परिवारों के रिश्तों की गहराइयों से पूरी तरह से अनजान थी, इसलिए इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच पाना संभव नहीं था। उसे ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सही है और कौन गलत, पर करना तो वो भी यही चाहती थी। उसे भी अतीत के राजों पर से पर्दा उठाना था ताकि शान की नफरत की वजह को जानकर उसे मिटा सके। इसलिए कुछ पल अर्जुन की बातों के बारे में गहराई से सोचने के बाद उसने गंभीरता से कहना शुरू किया, शायद आप ठीक कह रहे हो सकता है इन सब के पीछे कोई तीसरा ही हो। मुझे नहीं पता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, ना ही मैं ये बता सकती हूँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो भी हुआ है और जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। तभी मिस्टर मल्होत्रा के दिल में इस कदर नफरत का जहर भरा हुआ है, और मैं भी इस नफरत को मिटाना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी भैया की सच्चाई का पता लगा सकूँ, पर मुझे नहीं लगता कि डैड मुझे कुछ बताएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सच्चाई तक पहुँच सकूँ। हमें अभी बस कोशिश ही करनी है। तू सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर और मैं उस प्रवीण की जन्म कुंडली निकलवाता हूँ। मेरा सबसे पहला शक उसी पर जा रहा है। होना हो उसका इन सब से कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर है। हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ हमारे हाथ जरूर लगेगा। आरवी ने उसकी बात सुनकर हामी भर दी, फिर गंभीरता से बोली, भैया अगर आगे भी सारे सबूत ठाकुर साहब के खिलाफ हुए, और अगर ठाकुर साहब ही इन सब के पीछे हुए, तो अगर उन्होंने आपको झूठी कहानी बताई हो तो। आरवी का सवाल सुनकर अर्जुन के भाव भी एकदम गंभीर हो गए। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर सच्चाई सामने आने के बाद दोषी डैड निकले तो उन्हें उनके गुनाहों की सजा में खुद दिलाऊंगा। आरवी तो अर्जुन को देखती ही रह गई। आसान नहीं था अर्जुन के लिए ये कहना, पर उसका जवाब ये साबित कर गया था कि वो सच के ही साथ है, जो देखकर आरवी कुछ रिलैक्स हो गई। एक बार फिर वहाँ खामोशी छा गई, दोनों ही किसी सोच में गुम थे। अचानक ही अर्जुन ने उसे देखते हुए पूछ लिया, आरवी तुझे पता है कि आंटी कहाँ है, मतलब उनके बारे में कोई भी जानकारी है तेरे पास, कभी किसी से सुना हो? आरवी ने उसका सवाल सुना तो तुरंत ही इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं भैया, मैं माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इनफैक्ट मैंने तो आज तक उनकी एक फोटो तक नहीं देखी है। मिस्टर मल्होत्रा नफरत करते हैं उनसे, घर में उनका जिक्र भी नहीं किया जाता, मुझे तो उनका नाम तक नहीं मालूम। आरवी की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर कुछ देर गहराई से विचार करने के बाद गंभीरता से बोला, अगर ऐसा है तो हमें ढूंढना होगा उन्हें भी, क्योंकि वो अतीत की एक अहम कड़ी है। अगर आंटी का पता चल जाए तो इन उलझी कड़ियों को सुलझाना कुछ आसान हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर आरवी के माथे पर बल पड़ गए। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, पर भैया हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे और कहाँ?
वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू बस कोशिश कर कि सालों पहले क्या हुआ ये पता चल जाए हमें, ताकि हमारे लिए इस पहेली को सुलझाना आसान हो जाए। और एक बार, शान पर अभी उसकी नफरत और गुस्सा हावी है, तो कोशिश करियो कि तू उसके सामने कभी कमजोर ना पड़े, वरना वो तुझे चोट पहुंचाने से पीछे नहीं रहेगा। तुझे अभी हिम्मत के साथ उसका सामना करना होगा, क्योंकि चाहे किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो, पर तूने कुछ गलत नहीं किया है, और जब तू दोषी नहीं तो तुझे सजा सहने की भी कोई जरूरत नहीं है। भैया, मैं समझ गई आपकी बात। यहाँ अर्जुन और आरवी आगे की प्लानिंग कर रहे थे, और अब दोनों साथ मिलकर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की तैयारी में लग चुके थे, और वहाँ शान आरवी को ढूंढ रहा था। शान की गाड़ी इस रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी तो अचानक ही उसकी नजर रेस्टोरेंट की तरफ घूम गई, और जैसे ही उसकी नजर अंदर बैठे बात करते अर्जुन और आरवी पर पड़ी, उसके माथे की नशे तन गई, स्टेयरिंग पर उसकी मुठ्ठियां कस गई और आंखें गुस्से से जल उठी। अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ कार रुक गई। शान ने उसके ठीक से रुकने तक का इंतजार नहीं किया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलते हुए गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। आरवी और अर्जुन ने अपनी बात खत्म ही की थी कि शान की गुस्से भरी तेज आवाज वहां गूंज उठी, क्या कर रही हो तुम यहाँ?
लेकिन किस्मत ने ऐसी चाल चली कि दोनों को शादी करनी पड़ी, वो भी एक दूसरे से। हालांकि ये शादी बस एक नाटक थी, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मजबूरी। एक सीधा साधा बनारसी लड़का और एक चुलबुली बिंदास लड़की, दोनों अजनबी, दोनों अलग, लेकिन हालातों ने उनके हाथों में मेहंदी और गले में वरमाला डाल दी। सब कुछ नकली था, हंसी, रिश्ते और साथ भी, पर फिर नजरों में ठहराव आने लगा, बातों में अपनापन घुलने लगा, और जो दिल कभी बंधना नहीं चाहता था, अब वो किसी की मौजूदगी से धड़कने लगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी सच्चे इश्क की शुरुआत है? इश्क मुबारक, एक नकली शादी, एक अधूरी मोहब्बत, और दो दिल जो अनजाने में एक दूसरे के लिए ही धड़कने लगे।